ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय तो आज हम लोग पढ़ेंगे भागवत महापुराण से छठा स्कंद अध्याय दो विष्णु दूतों के द्वारा अजामिल का उद्धार। ऐसे मुझे बताया गया था श्लोक संख्या 42, लेकिन 5 मिनट पहले बताया गया श्लोक संख्या 43।
कोई बात नहीं
महाराज, you understand which language? You are Indian, you know Hindi, right? Hindi ka kitab kahan hai? Hitva Kalevaram. Padmalochan can translate for you. Tirthe गंगायाम दर्शनाद अनु सद्धा स्वरूपम जगृहे भगवत पार्श्ववर्तिनाम हित्वा कलेवरम तीर्थे गंगायाम दर्शनादनो सद्ध स्वरूपम जगृहे भगवत पार्श्ववर्तिनाम हित्वा कलेवरम तीर्थे गंगायाम दर्शनादनो सद्ध स्वरूपम जगृहे भगवत पार्श्ववर्तिनाम हित्वा कलेवरम तीर्थे गंगायाम दर्शनादनु सद्ध स्वरूपम जगृहे भगवत पार्श्ववर्तिनाम। माताजी, लेडीज,
गंगा
हित्वा त्याग कर, कलेवरम भौतिक शरीर, तीर्थे तीर्थस्थान में, गंगायाम गंगा नदी के तट पर, दर्शनातनो दर्शन करने के पश्चात, श्रद्धा तुरंत, स्वरूपम अपना आदि आध्यात्मिक रूप, जगृहे धारण कर लिया, भगवत पार्श्ववर्तिनाम जो भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त है। अनुवाद और तात्पर्य भक्तिविदान स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। विष्णु दूतों का दर्शन करने के बाद अजामिल ने गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। उसे अपना आदि आध्यात्मिक शरीर पुनः मिल गया जो भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त शरीर था। तात्पर्य भगवत गीता 4:9 में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर को छोड़ने पर इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अभी तू मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। कृष्णभावनामृत में पूर्णतया कृष्ण भावनामृत में पूर्णता का यह फल है कि मनुष्य अपने भौतिक शरीर को त्यागने के बाद तुरंत ही अपने आदि आध्यात्मिक शरीर में भगवान के पार्षद बनने के लिए आध्यात्मिक जगत में स्थानांतरित कर दिया जाता है। कुछ भक्त वैकुंठ लोग जाते हैं और कुछ कृष्ण के पार्षद बनने के लिए गोलोक वृंदावन जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्निर्मीलितं येन तस्य श्रीगुरवे भूतैर्महद्वीयैमा पुरो विभो निर्मायसे ते यदमु सुपुरुषम् भोक्ते गुणां षोडशषोडशात्मकम् शोलम कृषिष्ठम भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुमयैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये, भावराधिका माधुरी अस्वादे सुखकाज जयति कृष्ण चैतन्य कलि प्रकटे ब्रजराज जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
तो अजामिल के इस प्रसंग का एक उपसंहारिक श्लोक है। सिनेमा गाना चल रहा है कुछ, अजामिल कथा सुनो अभी। हरे कृष्ण। तो अजामिल हरिद्वार पहुंच गए हैं, ठीक है, और वहां पर मंदिर में गए। हरिद्वार पुण्य भूमि है लेकिन मंदिर ज्यादा पुण्य है। जितना समय हो सके मंदिर में आना चाहिए, मंदिर में आने से बड़ा फायदा होता है। प्रसाद तो मिलता ही है, साधुओं की संगति होती है, नाच गान होता है, ठाकुर जी का दर्शन होता है। किसी भी रूप में कोई मंदिर में आता है उससे फायदा होता है। बहुत लोगों से हम मिलते हैं और लोग कहते हैं महाराज आपके मंदिर में यहां बड़ी शांति मिलती है। क्या है ये, पत्थर से बना हुआ है, ईंटे से बना हुआ है, मार्बल है, पेंटिंग कुछ है, लेकिन यहां का जो वाइब्रेशन है वो बड़ा अशुद्ध है। तो भक्ति में टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंसेज तीन बड़े मायने रखते हैं। तो प्लेस, मंदिर भजन करने का स्थली है जहां भगवान नित्य निवास करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज, उनको नारद जी ने कहा कि तुम मधुबन जाओ जहां भगवान नित्य निवास करते हैं। प्रहलाद जी अपने पिता से कहते हैं आप जंगल में चले जाओ भजन करने के लिए, भगवान वहां निवास करते हैं जंगल में। हित्वात्पातम गृह अंधकूपम मनम गतो यद हरिमाश्रयेत, जंगल में जाओ। तो ये स्थान बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अजामिल मंदिर में आए और मंदिर में आकर खा पी करके आराम नहीं कर रहे थे, मंदिर में आए तो भजन कर रहे थे। मंदिर भजन का स्थली है। तो उस समय अष्टांग योग की पद्धति थी, जैसे आजकल क्या पद्धति है भगवान को प्रसन्न करने का, कलयुग में क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो अजामिल अष्टांग योग के द्वारा अपने इंद्रियों को वश में करने का प्रयास किए, बहिरंग योग के द्वारा इंद्रियों के विषय वस्तुओं से अपने को अलग कर लिए। योग या भक्ति वह साधन है जिस साधन से हम सत और असत में भेद समझ सकते हैं। इस भेद को समझते हुए असत को त्याग करके सत का आत्मसात करते हैं, स्वीकार करते हैं। उदाहरण दिया गया है, हालांकि संसार में रहते हैं लेकिन फिर भी जो भक्त भक्ति में लीन रहता है, योगी योग में लीन रहता है, वो संसार में रहते हुए देह में रहते हुए भी इससे वो परे रहता है, क्योंकि वो जानता है सत क्या है और असत क्या है। संसार जो है
संसार की विषय वस्तुएं जो है वो असत है, संसार परिवर्तनशील है। एक भी ऐसा दिन नहीं था जब हमारा देह घटा नहीं। हम कहते हैं बढ़ता है लेकिन घटता है, एवरीडे रिड्यूस होता है, देह घटता है। वैसे ही इंद्रिय तृप्ति या इसके विषय सब घटते हैं। भगवान कहते हैं दुखालयम और शाश्वतम, ये परिवर्तनशील है। जहां की जो सत वस्तु है वह कभी नहीं घटता है, आत्मा जैसा था वैसा है और वैसा रहेगा, और वैसे ही भगवान। इसलिए बुद्धिमान को चाहिए असत्संग त्याग, असत्संग को त्याग देना चाहिए और सत को धारण करना चाहिए। यह धारणा तब आती है जब हम योगारूढ़ हो जाए, भक्ति योग में आरूढ़ हो जाए। ठीक वैसे ही जैसे नारियल, कितने लोग नारियल देखे हो, सब देखे हो ना, कुछ कच्चा होता है कुछ पका होता है। जो कच्चा नारियल होता है उसमें पानी होता है ना, लेकिन जब उस पर सूर्य का रोशनी पड़ता है तो पड़ते 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 एक समय आता है वो पानी सूख जाता है और वो नारियल का रूप धारण कर लेता है ना। वो अपने सेल को छोड़ देता है, गुड़ करता है, हिलाओ तो सेल में है लेकिन सेल को छोड़ दिया है। वैसे ही योगी या भक्त जो भक्ति करते हैं, प्रत्याहार के स्थिति पर आ जाते हैं, तब शरीर में रहते हैं, संसार में रहते हैं, लेकिन फिर भी संसार से परे रहते हैं। ठीक वैसे नारियल के समान। तो मैं कहा करता हूं, एक होता है इमोशन और एक होता है डिवोशन। इमोशन का जो प्लेटफॉर्म है वह प्रत्याहार तक है और डिवोशन का प्लेटफॉर्म प्रत्याहार से आगे है। और वह जो प्लेटफॉर्म है वह है ध्यान, धारणा और समाधि। ये डिवोशन का हम लोग कह देते अरे हम डिवोटी हैं, हम डिवोटी हैं, लेकिन डिवोशन कितना है ये तब आता है जब ध्यान, धारणा और समाधि की स्थिति पर हम आ जाए, वह डिवोशन है। आज के प्रसंग में कलयुग में श्रीपाद जी गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति का अर्थ होता है साधु संग। जब साधु संग की लालसा उत्पन्न हो जाए तब तो समझना चाहिए कि हम भक्त बन रहे हैं। सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवंत हृत कर्ण रसायन कथा तज्जो सनादाद अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिम भक्ति अनुक्रमिष्यति। तो वहां जब भक्ति शब्द आया है श्रीपाद जी को समझ, भक्ति मतलब साधुओं की संगति। जब साधु संग करने की इच्छा उत्पन्न हो तब समझा जाए कि हम भक्त बन रहे हैं। लेट अस बी ऑनेस्ट, हम लोगों में कितने लोगों को साधु संग करने की इच्छा है? कम से कम अपने से हम लोगों को ईमानदार बनना चाहिए। पहला नंबर हम समझते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, अब बाल सेविंग करा लिए, लाल कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं तो सब जान गए हैं, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इच्छा का वो हैंकरिंग कहां है जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों में था, जो षड गोस्वामियों में था, इस्कान में भी पहले था। कोई भक्त आता था तो भक्त लोग घेर लेते थे, पूछते थे। आजकल कन्नीगढ़ साइड में चले जाते हैं, बदल गया है समय। चाहिए कि साधुओं का संगति करें, सत्संग करें और वहीं से भक्ति उत्पन्न होती है। आदो सथा तथो साध संगत भजना क्रिया, भजन वास होता है। तो भक्ति प्रारंभ होता है सत्संग से, साधुओं की संगति से। उसके पहले का जो स्थान है वह कहलाता है इमोशन। जैसे जब देखते हैं जब नया भक्त आते हैं खूब नाचते हैं,
रूफ को पकड़ लेंगे नाच करके, हैं? कुछ दिन के बाद धीरे धीरे हो जाते हैं। तो ठीक है, लेकिन है वो इमोशन, लेकिन सत्संग रहेगा तो डिवोशन में परिवर्तित हो सकता है। तो डिवोशन बहुत जरूरी है। तो अजामिल वहां जा करके योगासन के द्वारा प्रत्याहृते इंद्रियोग्रामो, प्रत्याहार के स्टेज को प्राप्त किए, और उसके बाद जिजेज मन आत्मनि ध्यान यानी भक्ति करना प्रारंभ किए। इस श्लोक से पता चलता है, श्लोक संख्या 40 से, कि मन जब तक से भगवान में नहीं लगेगा तब तक से भक्ति नहीं प्रारंभ होगी। जब मन भगवान में लगना शुरू हो जाए, चाहे भगवान के दर्शन में, चाहे भगवान के नाम में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम, चाहे भगवान कथा सुनने में, भगवान का सेवा करने में, मन अहर्निश भागता रहे, किसी न किसी प्रकार से भगवान से हम जुड़े रहें, तब भक्ति प्रारंभ होती है। उस दिन से भक्ति प्रारंभ होगी जब मन भगवान में लगने लगता है। लेकिन मन मंदिर में रह करके विषय वस्तुओं में लग जाता है तो समझ लो भक्ति नहीं है, वो भक्ति नहीं हो रही है। तो अजामिल जुजोज मन आत्मनि, भगवान में अब मन लगाना शुरू किए, यानी भगवान का ध्यान करना शुरू किए। श्लोक संख्या 41 में बताया गया है, ततो गुणेभ्य आत्मानम व्युज्यात्मा समाधिना जुजेज भगवत धामनी ब्रह्मण्य अनुभवात्मनि, ब्रह्मण्य अनुभवात्मनि। यह जो स्थिति है वह धारणा की स्थिति है, यानी भगवान का सर्वत्र दर्शन करना, भगवान का दर्शन करना यह धारणा की स्थिति है। जब ध्रुव महाराज नारद जी से मिले थे शुरू शुरू में, तो भगवान नारद जी ध्रुव महाराज को भक्ति का रास्ता बतला रहे थे, और उसमें धारणा के संबंध में बतलाए कि भगवान का सौंदर्य कैसा है और भगवान के सौंदर्य पर कैसे ध्यान करना चाहिए। जब ध्यान करते हैं किसी वस्तु को और वह वस्तु हम में आत्मसात हो जाती है, हमेशा वह याद रहता है, तो कहलाता है धारणा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं अनुभव आप सॉरी श्लोक के अनुवाद में कहते हैं अनुभव आत्मनि कहते हैं कि जिसके विषय में सदैव सोचा जाता है, चरण कमलों से शुरू करके धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हुए। जब योगी ध्यानमग्न हो जाता है तो भगवान का दर्शन करने लगता है। जैसा कि नारद जी बतलाए थे ध्रुव महाराज को, जब ध्यान में ध्रुव महाराज नारद जी के बताए हुए भगवान के सौंदर्यों का मूर्ति बनाए, जो जो बताए थे, जैसे आर्टिस्ट एक्सपर्ट जो आर्टिस्ट होता है वो क्या करता है, यदि किसी रूप का कोई वर्णन करता है तो वह तुरंत जो सुनता है ध्यान करता है और तुरंत धारणा कर करके उसका शेप दे देता है। तो योगी या भक्त को हमेशा उस धारणा के ब्रह्मणी अनुभव आत्मनि, ब्रह्म यानी भगवान को धारण करना चाहिए, और धारण करने कैसे, चरण कमलों से। प्रभुपाद जी भी भगवान को धारण करने का तरीका भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय कुंदी माता के प्रार्थना के तात्पर्य बतलाए हैं, जहां पर यह श्लोक है, नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगय। माता कुंती किस प्रकार से भगवान का ध्यान कर रही है, प्रणाम कर रही है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोग कुंती के प्लेटफॉर्म पर नहीं है, इसलिए हम लोगों को चाहिए भगवान के चरण कमलों से ध्यान करते हुए जाना। और इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों से ध्यान करते हुए जब जाएंगे हम लोग, तो भगवान के मुखारविंद पर जब हमारा दृष्टि पड़ेगा, तो उस समय भगवान जब चरणों से होकर के जाएंगे, तब उस समय भगवान क्या करते हैं कि भगवान के इस मुख प्रदेश से पांच प्रकार के बाण निकलते हैं। पुष्प बाण आया, पंच बाण आया, भगवान के चितवन से, भगवान के कपोल से, भगवान के आंख से, और भगवान के मुस्कान से। और वो जो बाण होते हैं भक्त के हृदय में लगते हैं और भक्त को आत्मसात कर लेते हैं, वो भक्त उनका हो जाता है, तो वह है धारणा की स्थिति। और उसके बाद समाधि। तो श्लोक संख्या 41 में, प्रथम श्लोक 40 में ध्यान का बात किया गया है, प्रत्याहृत इंद्रिय ग्रामो, प्रत्याहार के बाद में ध्यान का, श्लोक संख्या 41 में धारणा का, और श्लोक संख्या 42 में समाधि का वर्णन किया गया है, जिसको असीम प्रभु हमको बताए थे कथा कहने के लिए। तो चूंकि मैं उसको पढ़ा था और आचार्यों का कमेंट्री भी देखा था, तो मैं सोचा कि उस पर थोड़ा हम बात करेंगे और तब फिर इस श्लोक पर हम लोग आगे आएंगे। आज एक भक्त आया गाक प्रभु जी प्रसाद 9 बजे तक प्रसाद नहीं है, और मेरा तो नहीं खत्म हो गया, ठीक है ना। तो श्लोक संख्या 42 में समाधि की स्थिति बताई गई है। देखिए, ध्यान तब उत्पन्न होता है जब सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जब तक से पाप रहेगा भगवान पर ध्यान नहीं हो पाएगा। भगवान गीता में ही कहते हैं, तेषां त्वंतगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद मोह विमुक्ता भजन्ते माम दृढ़ाव्रता। वही व्यक्ति भजन कर सकता है जो पाप से मुक्त नहीं बल्कि निर्मुक्त, निकृष्ट रूपेण मुक्त हो गया है, थोड़ी ही पाप उसमें नहीं रह गई है, जैसे अजामिल बिल्कुल शुद्ध हो गया था नारायण नाम ने करके। और हम लोग आसानी से मुक्त हो सकते हैं। भगवान का नाम ऐसा पावरफुल है, कहा गया कि एक नाम इतना पावरफुल है कि संसार में जितना भी पाप करो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना नहीं कि जो नाम खत्म नहीं कर सकता है, कर्माणि निर्दहते किंतु च भक्ति भाजा, ये नाम बहुत पावरफुल है। तो इस प्रकार से व्यक्ति जुगारूढ़ हो जाता है, दृढ़ता से भजन करने लगता है। उसके बाद इस समाधि की जो स्थिति है, इसका भी वर्णन भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जो 4 श्लोक है भगवान कंसेशन दिए भक्ति करने का है। तो प्रथम श्लोक है, मई एव मन आधस्व मनोबुद्धि निवेश निवस्यति मई एव अत ऊर्ध्व न संशय। भगवान में निवास करने का तरीका है मन और बुद्धि को एकाग्र भाव से, अनन्य भाव से भगवान में लगा देना, यही है समाधि। समधि, सम्यक रूप से भगवान में लग जाना। हालांकि ध्यान से ही लग जाता है, प्रत्याहार मतलब सेसेशन, और कोई जरूरत है नहीं। खाना पीना सोना तब तक से जरूरत है जब तक से शरीर में हम रचे पचे हैं। जब शरीर से परे हो गए हैं तो खाना पीना का कोई चित नहीं रहता है। तो ध्यान, धारणा, समाधि, धी, मन और बुद्धि भगवान में लग जाते हैं ध्यान से ही। लेकिन जो समाधि की स्थिति है उसमें पूर्णतया भक्त फिक्स हो जाता है। प्रायः लोग प्रश्न करते हैं कि क्या भगवान को दिखा सकते हैं, जरूर दिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए समाधि की स्थिति पर आना पड़ेगा। जो व्यक्ति समाधि की स्थिति पर आता है वो 24 आवर ए डे भगवान का दर्शन करता है। कल भी बृहद भागवत महाराज वो कल क्लास में बात हो रही थी कि क्या गारंटी है कि मरते समय भगवान का स्मरण होगा। लेकिन जो समाधि की स्थिति में रहता है उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता भगवान के अलावा, शरीर से उसका कुछ लेना देना है नहीं, शरीर तो छोड़ दिया है प्रत्याहार की स्थिति पर ही। अब तो ये दिखाई केवल पड़ रहे हैं तो भगवान दिखाई पड़ रहे हैं, और स्मरण केवल हो रहा है तो भगवान का स्मरण हो रहा है। जिसका मन बुद्धि भगवान में लग गया है, मई ए व मन आदस्व मन बुद्धि निवेश है, निवश्य स्थिति, वो निवास करता है भगवान में। कहते मई एव मतलब निश्चय ही, वो मुझ में निवास करता है, यानी वह व्यक्ति 24 आवर ए डे कृष्ण भावना भावित रहता है। तो भगवान का स्मरण न करने का सवाल ही नहीं होता है। और यदि मान लो भगवान का कोई कृपा हुआ और किसी प्रकार से वो भूल भी गया उस समय, तो भगवान थोड़ा ग्रेस पीरियड देते हैं, कोई बात नहीं, तो इतना दिन भजन किया है कैसे तुम मुझे भूल सकते हो। और भगवान तो जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान थी ना, भगवान जानते हैं, तो भूलने का सवाल नहीं होता है। एनीवे, तो समाधि की स्थिति में भक्त भगवान का हमेशा दर्शन करता रहता है। लेकिन इस स्थिति तक आने के लिए त्याग जरूरी है। अजामिल ने त्यागा, मैं पिछले दिन जब क्लास किया था बताया था कि अजामिल के पास उस अवसर था, विष्णुदूतों का दर्शन कर लिया, उसको नया जीवन मिल गया था। जमदूत लोग चले गए थे, पुनः वह लाइफ में आ गया था। यदि वह चाहता तो पुनः बेटे का देखभाल करना शुरू करता, पुनः कुछ बिजनेस शुरू करता, पुनः कुछ और काम करता। कभी कभी लोग मरते मरते बच जाते हैं, मर करके भी बच जाते हैं कुछ लोग तो, तो कहते हैं कि भगवान ने हमको सेकेंड चांस दिया है। ठीक है, भगवान ने चांस, तो भगवान भजन न करो, भजन नहीं करेंगे, फिर वही खुड़ खुड़ करना शुरू करेंगे जो कर रहे थे, वही फिर बिजनेस में जाएंगे। हमारे एक भक्त हैं मित्र अरुण सक्सेरिया, उनके पिताजी, उनको ब्लड कैंसर हो गया था, एंड वो गए थे ह्यूस्टन। तो हमारा वहां श्याम सुंदर प्रभु हैं, मैं उनसे बात किया था, तो उनको डेली प्रसाद लेकर आते थे। उनका ब्लड कैंसर ठीक हो गया, आए तो जब हमसे मिले तो बड़ा सम्मान के साथ में बात किए और कहे ये जो कुछ भी हुआ है भगवान के कृपा से हुआ है, मैं तो मर गया था लेकिन भगवान ने हमको सेकेंड चांस दिया। तो मैं कहा सक्सेरिया जी, जब भगवान ने सेकेंड चांस किया तो ऑफिस छोड़ो, अब भजन करो, अब तो भजन करो। लेकिन काहे को, असर नहीं पड़ता है। तो यह एटलीस्ट अजामिल से हमें देखने को यह पता मिलता है, चलता है कि साधु संग करने के चलते अजामिल इतना प्यूरिफाइड हो गया था, इतना प्यूरिफाइड हो गया था कि सेकेंड चांस मिलने पर सेकेंड चांस को लूज नहीं किया, वो भक्ति करना प्रारंभ किया। त्यागा, त्याग से भगवान की प्राप्ति होती है, त्यागने से भगवान मिलते हैं, त्याग से भक्ति की प्राप्ति होती है और भक्ति से भगवान प्राप्त होते हैं। मैं संबंध में सदैव कथा कहा करता हूं, वो गुरुजी और चेला वाला, कि गुरुजी थे हमेशा ये कहते बेटा त्यागो, त्यागा शांति निरंतरम, त्याग से शांति की प्राप्ति होती है। चेला बदमाश था, विपिन सामने रहो ना, पीछे क्यों बैठा है। तो चेला कहता था गुरुजी आप जो कह रहे मैं तैयार हूं, लेकिन सब त्यागना चाहिए, लेकिन मेरे विचार से लक्ष्मी जी को नहीं त्यागना चाहिए, पैसा काम का चीज है, कैसे त्याग सकते हैं। गुरुजी ने कहा नहीं, उसको भी त्यागना पड़ेगा, जब छोड़ोगे तब मुक्ति मिलेगी। वो सब स्वीकार करता था लेकिन लक्ष्मी जी से उसकी आसक्ति थोड़ा ज्यादा हो गई थी, वो कहा इसे नहीं त्यागना चाहिए। एक समय गुरु और चेले जा रहे थे, बरसात का समय था, नदी में बाढ़ आई हुई थी, नदी पार करना था। नाविक लोग बड़े चलाक होते हैं, वो पैसा पहले ले लेते हैं, नहीं तो पता नहीं इस बार जाने के बाद पैसा देगा कि नहीं देगा, पैसा पहले ले लेते हैं। तो नाविक पैसा मांगा, गुरु जी ने कहा मैं पैसा नहीं रखता हूं, मैं साधु आदमी। पहले साधु लोग पैसा नहीं रखते थे, उनके लिए सब फ्री था। ये फ्री पर मुझे याद आया 1977 का बात है, एक भक्त थे 77-78 महाभूज दास, इंग्लैंड का डिवोटी था। तो उसने सुना कि इंडिया ट्रेन में पैसा नहीं लगता है, साधुओं को मुफ्त है। तो वो मुफ्त में ही ट्रेवलिंग करता था। तो एक बार टीसी पकड़ लिया तो कहा नहीं सब भगवान का है, ट्रेन भगवान का है, ये लोहा भगवान का है, हम भी भगवान के हैं, पैसा हम क्यों देंगे। तो कहा कि स्वामी जी उनके लिए मुफ्त जिनके पास पैसा नहीं है, टीसी ने कहा। हम लोग आई थिंक मथुरा से वृंदावन जा रहे थे या कहीं वहां मथुरा से जा रहे थे दिल्ली। तो कहा कि स्वामी जी उन लोगों के लिए मुफ्त है जिनके पास पैसा नहीं है, आपके पैसा है, इनका पैसा था ही, तो मुफ्त है उनके लिए जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास है तो उनको भाई देना ही पड़ेगा। और प्रभुपाद जी इसको सलाह नहीं देते कि तुम विदाउट टिकट ट्रेन टिकट जाओ, विदाउट टिकट जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। एनीवे तो उन महात्मा ने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कुछ रखता नहीं हूं। नाविक ने कहा कि हमारा नियम है बिना पैसा लिए हम आपको पार करेंगे नहीं। अब नाविक और महात्मा में बात हो रही थी, महात्मा जी समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जो चेला था उसके पॉकेट में आठ आना पैसा था, आठ आना समझते हो ना, दो चौवन्नी, कोई नहीं जानता चौवन्नी किसी का, जानते हो सब वो खत्म हो गया आजकल, दो चौवन्नी था। तो उसने पूछा नाविक से क्या बात है, क्यों आप हमारे गुरु जी को परेशान करते हो। कहा परेशान नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि भाड़ा दे दो चलो उस पर, मैं तो लेंगे तैयार हूं। क्या कितना लगेगा, कहा चार आना 25 पैसा। तो पूरा अठन्नी निकाला, कहा लो आठ आना दे दिया, नदी पार कर गए। जब उस पार गए तो चेला बड़ा खुश था, कहा गुरु जी देखा आप हमेशा बोलते थे कि सब कुछ छोड़ो सब कुछ छोड़ो सब कुछ छोड़ो, मैं कह रहा था सब छोड़ो पैसा मत छोड़ो, देखा पैसा का इंपॉर्टेंट, जब पैसा था तो हम लोग पार हो आए, पैसा नहीं होता तो हम वहीं के वहीं रह जाते। एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, गुरुजी को बड़ा गुस्सा है, करे मूर्ख कहीं का, देख अपने पॉकेट में पैसा है, तेरे पॉकेट में देख तो पैसा है। कहा नहीं पैसा नहीं है। कहां गया पैसा, तक पैसा नाविक को दे दिया ना। तो गुरु जी ने कहा हां जब तुम छोड़ दिया ना, जब दे दिया तो हम लोग पार होकर के आए, नहीं तो रखा रहा था तो वहीं कोई रह जाते। जब छोड़ा तब हम यहां पर आए ना, रखा तो वहीं कोई रह जाते। तो छोड़ना सीखना चाहिए, जब संसार सागर को पार होना है तो छोड़ो। हित्वातपातम गृहअंधकूपम, त्यागो इसको संसार को, सब प्रकार के आसक्तियों को त्यागो, तब भक्ति के स्टेज पर हम आएंगे, ध्यान के स्टेज पर आएंगे। अजामिल ने सब काम किया था, तस्मिन उपारत धि, श्लोक संख्या 42 देखेंगे। उस समय जब अजामिल धारणा के स्थिति पर था, वैकुंठ उसके सामने था, वैकुंठ का दर्शन कर रहा था, उसके पहले श्लोक में आया हुआ है ब्रह्मण अनुभवात्मनि, भगवान का अनुभव कर, भगवान का दर्शन कर रहा था, वैकुंठ धाम का दर्शन कर रहा था। उस समय तस्मिन परिस्थिति कैसी थी उसकी, कहते हैं सुखदेव गोस्वामी उपारतधि द्विज, उस द्विज का परिस्थिति क्या था जब भगवान का दर्शन कर रहा था, कहते हैं उपारतधि,
बाह्य विषयान निवृत्त्य हराओ मे निरतः बुद्धि अभूत अस्मिन् काले। उपारधि का मतलब वह स्थिति, वह परिस्थिति जिस समय मन और बुद्धि सब कुछ बाह्य विषयान निवृत्त्य, विषय वस्तुओं से जब सब कुछ निवृत्ति हो जाए और भगवान में लग जाए तो उस बुद्धि को उपारत धि कहा जाता है, यानी वैराग की स्थिति। विगत राग इति वैराग और विशेष राग इति वैराग। तो अयामिल का जो स्थिति था कहते हैं उपारत धि द्विज, उस ब्राह्मण का जो बुद्धि था सम्यक रूप से संसार से खत्म हो चुका था और भगवान में लग गया था। यह है प्रोग्रेसिव वे ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावना में आगे बढ़ने का यही तरीका है। जब पहला पैर आगे रखते हैं तो पीछे का पैर उठाना पड़ेगा। चलने का मतलब ही होता है एक पैर स्थिर करो, दूसरा पैर उठाओ, तब आगे चलोगे। तो भक्ति का मतलब ही होता है कि भगवान में अपने मन को लगाओ और संसार से मन को हटाओ। दो पैर पर चलते हैं ना, एक पैर स्थिर करते हैं और एक पैर हटाते हैं। ठीक वैसे ही भक्ति करने का मतलब भगवान में, भगवान के भक्तों में, हरि कथा में, भगवत संबंधी वार्ता में, भगवत धाम में मन को लगाओ और संसार से हटाओ। यह है प्रोग्रेसिव वे ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। इससे हमारी भक्ति की प्रगति होती है। तो इस प्रकार से अजामिल उपारतोधि हो गया था उस समय। हम सब लोगों को उपारतोधि होना चाहिए, संसार से मन हटाना और भगवान में मन लगाना। इसीलिए तो हम यहां पर बैठे हुए हैं। किस लिए इस काम को ज्वाइन किए? खाने पीने के लिए, ये तो कहीं मिल जाएगा। ऋषभदेव कहते हैं कुत्ते सुअर गधे मिल जाए, उनको भी मिल जाता है। यहां पर आए हैं एक ही काम के लिए और वह है उपारतधि, संसार से मन को हटाने के लिए और भगवान में मन को लगाने के लिए। बस यही पुरुषान पुरा अद्राक्षित प्राक उपलब्धान उपलब्ध शीरसा बवंदे। इस प्रकार से जब जिस समय संसार से मन हट गया था, भगवान में लग गया था, टोटली अनन्य चिंतयंतो, उस परिस्थिति में उसने क्या देखा कि उन्हीं पुरुषों को देखा, उन लोगों को देखा जिनको पहले देखा था। ऐसा बात नहीं कि भगवान के जो विष्णु दूत है वहां पर कम ही लोग हैं। ऐसा बात नहीं कि वहां पर कल दो ही लोग थे, चार ही लोग थे जो आए थे, बहुत लोग हैं। इसका दूसरा अर्थ भी है कि उन्हीं लोगों जैसे लोगों को देखा जो उसका रक्षा करने आए थे, चतुर्भुज धारण किए थे, वैकुंठमयन थे। तो वैसे ही लोगों का अजामिल ने दर्शन किया, यानी वैष्णवों का दर्शन किया और अजामिल स्वयं वैष्णव हो गया था। तो दर्शन करने के बाद क्या किया? शिरसा बवंदे, सिर झुका करके प्रणाम किया। यही है वैष्णवता। जब भी एक वैष्णव को हम देखें तो सिर झुका करके प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। पहले भक्त लोग खूब प्रणाम करते थे इस काम में, आजकल थोड़ा कम हो गया है, कंजूसी कर रहे हैं। अरे प्रणाम करना एक भक्ति है। भगवान गीता में कहते हैं मन मामा भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कारो। प्रणाम करना एक भक्ति है, संस्कार मिलता है प्रणाम करने से, क्या तकलीफ है? प्रणाम करने संस्कार मिलता है। नारद जी कहते हैं कि जब किसी को सुखी रहना है तो तीन काम करो भाई, बड़े लोगों को सम्मान करो, प्रणाम इत्यादि कर करके, उनका गुणगान कर करके सम्मान करो।
बराबर वालों से मित्रता रखो और छोटे लोगों पर दया करो। तीन ही करना है, तीन करोगे हमेशा आनंद में रहोगे, हमेशा प्रसन्नचित रहोगे। लेकिन तीन में से एक भी गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ होगा। हम लोग प्राय क्या करते हैं, बड़ों से द्वेष रखते हैं, बड़ों से द्वेष रखते हैं। जो बराबर वाला है उसको नीचे, और छोटा है मैं सीनियर डिप्टी तो जूनियर है, चल एकदम कैसे खुश रहेंगे, मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, फिजिकली डिस्टर्ब रहेंगे। यदि शांति चाहिए तो तीन करना जरूरी है सब लोगों को। ऐसा बात नहीं कि मैं नहीं करता, मैं भी वही करता हूं जो मैं कहा। करना चाहिए वो अलग चीज है और करते हैं अलग चीज है। कहते ना कि जो अच्छा है वो लोग नहीं करते हैं, जो अच्छा लगता है वो लोग करते हैं, है ना। आज संसार इसी में फंसा हुआ है ना। साधु लोग इसके प्रति हैं, साधु लोग वही करते हैं जो अच्छा है, चाहे अच्छा लगे या ना लगे। और कर्मी लोग क्या करते हैं, जो अच्छा लगता है वो करते हैं। भगवान के मंदिर में दान देना ये अच्छा चीज है, लेकिन वो आई हॉस्पिटल खुलवाएंगे क्योंकि उनको अच्छा लगता है आई हॉस्पिटल खुलवाना, मंदिर बनाना है, मंदिर में दान देना अच्छा नहीं लगता है। तो जो लगता है अच्छा वो लोग करते हैं। तो हम लोगों को वही करना चाहिए जो अच्छा है। और अच्छा क्या है, अपने जो सीनियर हैं उनका सम्मान करें, उन्हें नमस्कार करें, जो बराबर वाले हैं उनसे मित्रता रखें, अपने दिल का बात खोलें, उनका बात सुने, और जो जूनियर हैं उन पर आशीर्वाद रखें। बस तीन ही काम रखो, फिर उसके बाद आनंद ही आनंद है। तो बबंद सिरसम प्रणाम किया, ये प्रणाम करना एक बहुत सार गर्भित चीज है। अजामिल ने प्रणाम किया विष्णु दूतों को। देखिए प्रणाम एक साइंस है। यदि सीनियर डिवोटी को कोई प्रणाम करता है तो स्वाभाविक है कि वो व्यक्ति खुश होता है और आशीर्वाद देता है। मुझे एक कथानक याद आ रही है प्रणाम के विषय में। दो मित्र थे, अमेरिका पढ़ने गए थे। अमेरिका से पढ़ कर करके एक मित्र पहले इंडिया आ गया था, लेकिन वो अमेरिकन कल्चर लेकर के आया था। दूसरा मित्र पढ़ा लिखा, नौकरी भी करना शुरू कर दिया, लेकिन अपने इंडियन कल्चर को भूला नहीं था। कुछ समय के बाद वो आ रहा था तो एयरपोर्ट पर लाने के लिए पूरा गांव चला गया था। अब गांव का लड़का था, अमेरिका पढ़ रहा था, अब तो भाई वो आ रहा है, चलो राधा कृष्णदास आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं। तो पूरा बाप मां दादा दादी ज्वाइंट फैमिली था, दो चार दस गांव वाले भी, ये दोस्त भी था, पूरा बस के ऊपर नीचे ऊपर बैठ करके आ गए सब लोग एयरपोर्ट पर उसको रिसीव करने के लिए। जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकला तो ये जो मित्र था अमेरिका सा था, हाय हेलो हाय हाय दूर से ही हाय हाय कर रहा था। वो आया, आकर के अपने दादा का पैर छुआ, पिताजी का पैर छुआ, गांव वालों का पैर छुआ, अरे मूर्खानंद देख रहे हैं हाय हेलो वाले। जब सब हो गया तो ये कहता, अरे यार तू इतना दिन अमेरिका में था, अभी तो तू कुछ नया चीज नहीं सीखा, वही आकर के पैर छूना, वही प्रणाम करना, वही काम कर रहा है तू। अरे अभी इंडिया भी बदल गया है, अभी हाय हेलो सब लोग करते हैं, सब लोग समझते हैं हाय हेलो, वही प्रणाम करना ही करना। तो इसने बहुत सुंदर उत्तर दिया, कहा देखो आज मैं अमेरिका में भी रह कर करके अपने को भूला नहीं हूं, और तो कुछ दिन अमेरिका जाकर के अपने को भूल गया है, यानी अपनी सभ्यता संस्कृति मैं नहीं भूला हूं। फिर बतलाया, जानते हो यदि प्रणाम करते हो किसी को, किसी का चरण स्पर्श करते हो तो स्पर्श करते हो उस व्यक्ति का तो करंट आता है उससे, उसके दिल का जो भावना है वो तुम्हारे ऊपर आता है। और स्वाभाविक है यदि कोई प्रणाम करता है छोटा बड़े को तो नेचुरली है बड़ा का हाथ उठ जाता है, मारने के लिए नहीं, आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठ जाता है ना, या बराबर वाला है यदि प्रणाम करता है तो अपने आप हाथ उठ जाता है प्रणाम करने के लिए। तो ये हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, इसको नहीं भूलना चाहिए, इसको इंटैक्ट रहना चाहिए। तो अजामिल तो शुद्ध भक्त हो गया था, भक्त हो गया था, अब वो ऐसे वैष्णवों को देखा, तो आई मीन जब विष्णु दूतों को देखा होगा अजामल, तो उसके मन में कई चीज आया होगा ना, एक चीज नहीं आया, कई एक चीज कि बाप रे बाप, यही लोग थे जिनके चलते उन खूंखारों से हमारा पेट छूटा है, जो जमदूत लोग थे देखने में भयावह थे, उन लोगों से हमारा पिंड छूटा इन लोगों के चलते, तो ग्रेटिट्यूड भी है। उसके बाद जो भगवान के भक्त होते हैं उनका दर्शन करने से ही कोई पवित्र हो जाता है, कोई भी हो। प्रभुपाद जी कहते हैं कि डिवोटी जो होते हैं वो सबके लिए डियर होते हैं। सर गोस्वामी अष्टकम में कहते हैं धीरा अधीरा जनक प्रिय प्रिय करो टू रफियन एज वेल एज टू सेंटली, दोनों के लिए वो डियर होते हैं, प्रिय होते हैं भक्त लोग। तो विष्णुदूत लोग में वही गुण था जो भगवान के समान था, और भगवान का एक गुण है उनका जो दृष्टि है, उस दृष्टि में कई एक चीज है। जैसे भगवान का जो दृष्टि है किसी पर पड़ता है, उसको विष्णु कहां है, विष्णु नहीं है, कृष्ण के क्या नाम, मैं वर्ड भूल रहा हूं, किसी को याद है जब भगवान का अवतार हुआ था 10वां स्कंद में, तो उनका वर्णन किया गया है भगवान के आंख का, पद्मलोचन नहीं, कमल लोचन भी नहीं, पंक 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 जेक्षा पंक जेक्षा ऐसे कुछ, जिनके अरविंदाक्ष नहीं, पंकजाक्ष, जिनका आंख जो है ना, ना मैं भूल रहा हूं, किसी को याद है 10th कैंटो का जो भगवान आविर्भाव हुए थे विष्णु का, पता नहीं कहां चला गया वो, मेरा वो जानता रहता है तो एनीवे, तो अंबुजाक्ष अब याद आ गया, अंबुजा अक्ष, अंबुजा मतलब अंबु मतलब समुद्र और ज मतलब उत्पन्न, समुद्र से जो भी उत्पन्न हुआ है भगवान की दृष्टि में। उदाहरण के लिए लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई है, तो किसी पर भगवान का दृष्टि पड़ गया अपने आप वो लक्ष्मीपति बन गया, पैसा मिल जाएगा उसको धन्यवाद भगवान का दृष्टि पड़ने से। उसके बाद विष भी भगवान के वो कहां चला गया अपना, गोकुलेश्वर पूछा था कब, पहले प्रवचन में मैं बताया था हरि जन्माष्टमी समय, तो गोकुलेश्वर आष्टमी, अरे भगवान के समुद्र मंथन तो विष भी निकला था, तो इसका मतलब क्या कि भगवान के आंख में विष भी है, मैं कहा बिल्कुल है। असुरों के लिए भगवान के आंख में जो हम लोगों का जीवन नष्ट हो रहा है वो विश्वत है, भगवान के आंख में कमल, कमल शांति का प्रतीक है। तो जिसका दृष्टि पड़ जाता है वैष्णव का और विष्णु का, जिस पर जिसके ऊपर पड़ जाता है उसका जीवन शांत हो जाता है, बुद्धि विवेक अपने आप आ जाता है। तो इन विष्णु दूतों का दर्शन कर करके ही अजामिल पवित्र तो हुए गए थे, याद आ गया, और उसके बाद उन लोगों को प्रणाम किए। अब उसके बाद का आज का श्लोक है, अब शुरू करते हैं आज वाला श्लोक। हित्वा कलेवरम छोड़े, त्याग दिए। भगवत गीता में बताया गया है कि वांसांस जीर्णानि यथा विहाय नमान गृणाति नरोपराणि तथा शरीराण विहाय जीर्णा नन्याति सन्याति नमान। ए पर्सन ए सोल चेंज दी बॉडी, ए पर्सन चेंज दी गारमेंट। देखा जाए इसमें तो कपड़ा बदलने में हमारी स्वतंत्रता है ना, हम बदल सकते हैं। यदि जो कंपेरिजन दिया गया है कि जिस प्रकार से व्यक्ति अपना कपड़ा बदलता है वैसे ही आत्मा अपना शरीर बदलता है, इसका तारतम्य क्या है? कपड़ा बदलने में हमारा इंडिपेंडेंस है, बदल सकते हैं, लेकिन शरीर बदलने में इंडिपेंडेंस है? कोई बदल सकता है? तो फिर कैसे अप्लाई होता है? लाओ ना जी, कैसे अप्लाई होता है यह श्लोक? वह अप्लाई होता है जीर्णानि, वो इसे बताया गया कि जब जैसे कपड़ा फट जाता है तो व्यक्ति बदलता है, वैसे जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो आत्मा। यहां पर हित्वा शब्द कहा गया है, जो सेल्फ रियलाइज हैं, जैसे हम कपड़ा निकाल देते हैं ना, हम समझते हैं कि हमें स्वेटर नहीं है, हमें कुर्ता नहीं है, तो हम निकाल देते हैं। लेकिन जो छोटा बच्चा है वो समझता मैं कुर्ता हूं, फटा कुर्ता पहनता है, मां कहती है बेटा एक कुर्ता निकाल दो नया कुर्ता, ना 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 मुझे अच्छा लगता है, रोते हैं ना बच्चे, बोलो ना जी हाँ या ना, अरे गलती बोल दो, हां बोल दो, अभी बाद में ना बोलना, अभी हां बोल दो। जो छोटे बच्चे होते हैं आसक्त होते हैं अपने कुर्ता में ना, वो गंदा कुर्ता है मां निकालती है रोना शुरू करते हैं, फटा कुर्ता है निकालना रोना शुरू करते हैं, क्यों? कि उन्हें ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार से शरीर छोड़ने पर वो लोग रोते हैं जिन्हें कोई ज्ञान नहीं। जो ज्ञानी है उनके लिए तो हित्वा शब्द आया हुआ है, परीक्षित महाराज शरीर छोड़ दिए थे, तक्षक जला दिया, कोई बात नहीं, हित्वा छोड़े, हम लोगों को दे छोड़ने में स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन यहां पर अजामिल को कहा गया हित्वा कलेवरम तीर्थे, उसने शरीर को छोड़ दिया। हम लोगों से शरीर छोड़ाया जाता है, पेशाब पैखाना भी कर देते हैं कभी कभी, तो छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन अजामिल फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस हो गया था। ये जो श्लोक है ये है सुमन भवम ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन का यही सार है ये आज का श्लोक। प्रभुपाद जी कहते हैं गोइंग बैक होम बैक टू गॉड हेड, तो ये मानव जीवन मिला हुआ है इसी काम के लिए, बैक होम गोइंग बैक होम बैक टू गॉड हेड। तो हम लोगों को ऐसे तैयारी करनी चाहिए, ऐसे तैयारी करनी चाहिए, ऐसे तैयारी करनी चाहिए जैसे अजामिल ने किया। और मृत्यु के समय हित्वा कलेवरम शरीर को त्याग देना चाहिए जमदूतों को आने से पहले। अब यहां पर जमदूत नहीं आए थे, उनका वर्णन ही नहीं है, पहले वर्णन है कि जमदूत लोग आए थे, बाद में नारायण नाम लिया तो विष्णु दूत आ गए। यहां पर ऐसा बात नहीं है कि अब हित्वा कलेवरम तीर्थे गंगायाम दर्शनात अनु, इन लोगों का दर्शन करने के बाद उस तीर्थस्थली हरिद्वार में गंगा किनारे उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, सद्ध स्वरूपम जगृहे, और अपने वास्तविक स्वरूप को उन्होंने प्राप्त किया। अब स्वरूप शब्द जो है ये संबंध ज्ञान है, जैसा हमारा संबंध भगवान से होगा जिस रूप में उस स्वरूप को हम प्राप्त करेंगे। या दूसरा अर्थ है अजामिल ने सारूप्य मुक्ति प्राप्त किया, सारूप्य मुक्ति को प्राप्त किया, सद्धम स्वरूपम जगृहे, जगृहे धारण किया, वैकुंठ रूप को धारण किया। तुरंत और भगवत पार्श्व वर्तिना, और
जो कि भगवत पार्षदों के लिए उपयुक्त हो। यानी वहां के बाद अपने रूप में आ गए। स्वरूप का अर्थ यह भी होगा सचिदान स्वरूप। ये नहीं कि एक देह को छोड़कर के एक दूसरा देह धारण कर लिए, ऐसा बात नहीं है। उस स्वरूप को धारण किए जो भगवत पार्षदों के लिए उपयुक्त हो। यानी हम लोगों का ये जो स्वरूप दिखाई पड़ रहा है ये बाह्य रूप है, ये हम लोगों का असली स्वरूप नहीं है, ये अन्यथा रूप है। हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित इति मुक्ति। मुक्त हो गया अजामिल, अपने स्वरूप में स्थित हो गया, यानी सच्चिदानंद स्वरूप को वह प्राप्त किया। और सच्चिदानंद स्वरूप ही वह स्वरूप है जिस स्वरूप से हम लोग भगवत पार्षद को प्राप्त कर सकते हैं और इटर्नली भगवान की सेवा में लग सकते हैं। और यह तब संभव है जब हम भगवत भक्ति में निपुण हो जाएंगे और उसका साधन तात्पर्य प्रबोधित हैं। जन्म कर्म चमी दिव्यम, भगवान दिव्य हैं, भगवान का जन्म दिव्य है, भगवान का कर्म दिव्य है। तो भगवान के इस जन्म दिव्य जन्म कर्म को यदि कोई तत्वतः जानता है, एज इट इज जानता है, विदाउट एनी अडल्ट्रेशन जानता है तत्वतः, वही व्यक्ति शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम को प्राप्त करेगा। गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड हेड, जहां जाने के बाद नो रिटर्न, वन वे टिकट, गो देयर स्टे देयर। कुछ कहा तो अच्छा नहीं है, रिटर्न टिकट लेना चाहिए। रिटर्न है लेकिन जब भगवान चाहेंगे तो आ जाओ प्रचार करने के लिए, ठीक है। और अपने घर जाने के लिए रिटर्न की जरूरत क्या है? भगवान कहते हैं वेलकम बैक, वेलकम बैक। हम लोग वहीं के हैं, जैसे मुकुंद माधव प्रभु कोई बॉम्बे का डिवोटी कहीं बाहर जाता है, कुछ दिन घूम के बाद आता है, कहते हैं वेलकम बैक असीम कृष्ण प्रभु है? तो ये वन वे टिकट पर गए थे। अब जो यहां पर आता है नया फर्स्ट टाइम कोई आया तो कहेंगे वेलकम, ओनली वेलकम, नॉट वेलकम बैक। उनका रिटर्न टिकट है, जाना है, लेकिन वेलकम बैक मीन्स हम नहीं जाना है। तो बैकुंठ में जब भक्त लोग जाते हैं वहां पर तो भगवान कहते हैं वेलकम बैक, नो मोर रिटर्न। नैति माम एति स्वर्जन, वहां जाने पर ये नहीं है। इसलिए हमें तैयारी करना चाहिए। ये मनुष्य का देह और साधुओं की संगति, ये जो इतना पावरफुल टूल है हमें हमारे पास, कि इन दोनों पावरफुल टूल के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य का देह दुर्लभ है और साधुओं की संगति दुर्लभ है। संसार में दो ही दुर्लभ वस्तु है और दोनों हम लोगों को प्राप्त है प्रभुपाद जी कृपा से। तो हम लोगों को इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए, जैसे अजामिल ने उठाया, अजामिल ने उठाया और पूरा लाभ उठा करके और भगवत धाम को प्राप्त किया। तो हम लोग भी ये मनुष्य देह और प्रभुपाद जी का कृपा जो प्राप्त हुआ है इसका पूरा लाभ उठाते हुए भगवान का भजन करते हुए, भगवान चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं, वे आए हैं हम लोगों को ले जाने के लिए, प्रभुपाद जी उनको असिस्ट कर रहे हैं बिना कोई भेदभाव के, महाप्रभु ले जाने के लिए तैयार हैं। यदि हम नहीं जाएंगे तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? सही में हम मूर्ख होंगे। एक छोटा एक कथानक कहूंगा उसके बाद क्लास समाप्त करूंगा। एक बार नारद जी बड़े खुश थे, तो भगवान ने कहा क्या बात है नारद जी आप बड़े खुश लग रहे हो? कहा भगवान मत पूछिए, ये हरादास अपना है ना, कहा है इधर, हाँ वो हरादास सब लोगों भगत बना दिया है, सब लोग हरे कृष्ण कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा सही बात है, हाँ बिल्कुल सब लोग हरे कृष्ण बोल रहे हैं, और हमारा काम खत्म हो गया, मैं कुछ आराम कर लूंगा, अब हरादास कर रहा है, सब लोग हरे कृष्ण बोल रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि नहीं 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 ऐसा हो नहीं सकता है। कहा कि नहीं हो ऐसा ही है, चलिए देखिए। तो भगवान अपना पुष्पक विमान लेकर के आए, किसी गृहस्थ के घर के सामने बाहर खड़ा कर दिए, कहे कि अब जाओ उसको बुला कर लाओ, चलो चलना है अभी। नारद जी गए,
उस भगत का है कि नारद जी को देखा तो हरादास सुना था भगवान कैसे होते हैं, नारद जी कौन है, पूरा शशांक दंड प्रणाम किया बड़ा, अरे बहु हमारा हो धन्य नारद जी आप हमारे घर पर आए। अच्छा नारद जी ने कहा देखो भाई मैं अकेला नहीं आया हूं, प्रभु भी आए हैं और भगवान तुम पर इतना खुश हैं कि वो पुष्पक विमान लेकर के आए हैं, चलो 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 चलना है। तो कहा नारद जी थोड़ा रुके रुके रुके, देखिए अभी मेरा बेटा विवाह करने का है ना, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भगवान ने ही तो कहा है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहिए, तो अभी कुछ समय का समय दे दीजिए आप जाइए, फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं चलूंगा बेटा के बात करने के बाद में। नाराज जी गए, कुछ समय के बाद फिर आए अपना पुष्पक विमान, भगवान कहे कि सर मैं नहीं जाऊंगा आप अकेले जाओ, पुष्पक विमान ले जाओ। आए नाराज जी कह बेटे शादी हो गई ना, शादी ही नहीं शादी हो गई थी हाँ, तो कहा हाँ बिल्कुल शादी हो गई है, बहू को बुलाया जल्दी आओ, नाराज जी बड़े महात्मा है प्रणाम करो जल्दी, हरादास आ गए प्रणाम करो फटाफट, आकर के बहू प्रणाम किया इंट्रोडक्शन करा दिए, कहता आप चलेंगे ना, अरे अभी नहीं नहीं शादी हुई थोड़ा नाराज जी रुक जाओ, कहां है आप तो ब्रह्मचारी आदमी क्या जानते हो घर गृहस्थी का मतलब, थोड़ा कुछ और समय दो। नाराज जी फिर गए, तीसरी बार आए तो नाती पोते भी हो गए थे, तब नाराज जी का तब चलना चाहिए ना, तो अरे अभी छोटे छोटे बच्चे हैं आपको मालूम नहीं है ये दादा का ज्यादा अधिकार होता है बच्चों के ऊपर, बाप माँ तो अपने मजाक कर रहे हैं, हमारे इंटरेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कैपिटल, ये हमारे इंटरेस्ट हैं, कुछ दिन के बाद आइएगा। फिर नारद चौथे बार आए तब अब चलना चाहिए ना, अब नारद जी को देखते ही इसके गुस्सा ऊपर चढ़ गया और कहता है नारद जी आपको और दूसरा कोई नहीं मिला क्या, हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, हमारे पीछे क्यों हम छोड़िए, तो हमें देखावटी भक्त नहीं बनना चाहिए, कहने का मतलब यह है हमें रेडी रहना चाहिए एनी मोमेंट एनी टाइम टू गो बैक होम बैक टू गॉड। धन्यवाद, हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन और कॉमेंट, हरादास गड़बड़ हो गया लगता है,
हरे कृष्णा। जैसे आप बोले कि शरीर त्याग करने के टाइम वो जब शरीर जीर्ण हो जाता है तो उसको छोड़ना पड़ता है, कभी कि हम देखते हैं कोई यंग उम्र में कोई छोटे बच्चा है वो तो वो कैसे जीर्ण कपड़ा शरीर फटने कपड़ा फटने का दूसरा कपड़ा पहनते, और शरीर यंग है जवान है वो नष्ट हो जाता है।
हरादास आप अंग्रेजी जानते हो ना,
इंग्लिश जानता नहीं,
अंग्रेजी में लोग पूछते हैं हाउ ओल्डर यू आर, कोई नहीं पूछता हाउ यंगर यू आर, आप कितने साल के बुड्ढे हो गए हो, कोई बोलता है फाइव ईयर ओल्ड टेन ईयर ओल्ड, पांच साल का बुड्ढा हूं, बुड्ढा मतलब जीर्ण, जन्म लेने के बाद ही हम जीर्ण होते जाते हैं, मत वेटिंग करो उस दिन के लिए, इसे प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमारा चरित धर्मान भागवता नहीं है, अभी से शुरू कर दो भैया, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, तो हमारा शरीर जीर्ण ही है। और कोई प्रश्न?
एक मेरा प्रश्न है, अजामिल बचपन से भक्त ही था वो, तो फिर आपने बताया कि उनको लास्ट में सामित भगवान के धाम प्राप्त हुआ, फिर बीच में वो जो गिर गए वो सब पाप करने लगे,
वो तो भक्त थे या नहीं थे इसका वर्णन नहीं है, लेकिन इसका वर्णन है कि वो ब्राह्मण के बेटे थे, तो नेचुरली है कि सतगुण प्रधान होंगे और सज्जू का समय था तो संग तो मिला ही था। प्रभुपाद जी इस अध्याय के अंत में बड़ा तार्किक ढंग से एक एक्स्ट्रा लिखे हैं और उसमें बताए हैं कि अजामिल एक बार नहीं कितने बार नारायण का नाम ले रहा था, तो नारायण का नाम लेना तो शुद्ध हो जाना चाहिए, फिर पाप क्यों करता था, फिर वो पाप क्यों करता था है? तो प्रभुपाद जी इसको बतलाए हैं कि नाम के बल पर पाप करने से नाम फलीभूत नहीं होता है। यदि कोई पाप करता है और समता में नाम ले लूंगा तो खत्म हो जाएगा, तो नाम का असर नहीं पड़ता है। लेकिन अजामिल न तो नाम का महिमा समझ रहा था और न यह समझ रहा था मैं पाप कर रहा हूं। वो नहीं समझ मैं पाप कर रहा हूं, मैं तो इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूं, आनंद मुझे मिल रहा है। जब समझ आया कि मैं पाप कर रहा हूं तुरंत त्याग देगा। वही ज्ञान नहीं था, वही ज्ञान नहीं था। चूंकि वह अपराध शून्य होकर के अपराध नहीं किया था और अंत में असहाय परिस्थिति में नारायण का नाम लिया था, तो धीरे 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 जो नारायण का नाम लिया था वह फलीभूत हुआ। प्रभुपाद जी अंजीर का उदाहरण दें, अंजीर का जो वृक्ष होता है एक दिन में नहीं फल जाता है, धीरे धीरे जब पेड़ बड़ा होता है तो अंजीर होता है तो अंजीर फल देता है। तो वैसे ही नारायण का धीरे धीरे नाम जो हुआ, कैसे भी लिया था ना, वो फलीभूत हुआ था।
भगवान का कृपा हुआ ना, फिर तो
नाम का कृपा हुआ। और नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, अभिन्नात्वान नाम नामे, ठीक है वही है। नाम के कृपा से, नारायण नाम के कृपा से उसे वैष्णवों का दर्शन हुआ। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बेज, कृष्ण के कृपा से गुरु प्राप्त करते हैं और गुरु कृपा से कृष्ण को प्राप्त करते हैं, कृष्ण कृपा से वैष्णव का दर्शन हुआ। तो आप ठीक कह रहे हो, वो नाम के कृपा से, नारायण के कृपा से उसे विष्णु दूतों का दर्शन हुआ। और बाद में जब सत्संग हो गया विष्णु दूत और जमदूतों के बीच में जब हो गया, तब अजामिल रियलाइज किया हाय हमें क्या किया, और इस प्रकार से भक्ति किया। और कोई प्रश्न? हाँ उधर माइक।
हरे कृष्ण प्रभुज। अच्छा, जीव भक्ति करता है इस जन्म के कर्म से अथवा पिछले जन्म के कर्म से?
इसके चक्कर में ना पड़ करके भक्ति किया जाए वो अच्छा है।
नहीं, जो भी भक्ति का जो भी मिलता है, सत्संग वगैरह मिलता है, भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है, वह इस जन्म का है कि पिछले जन्म का? ये मैं
कह रहा हूं ना कि इस चक्कर में ना पड़ करके भक्ति करो जो मिल गया है उसको। संसारिक लोग भूत को सोचते रहते हैं, भविष्य का सोचते रहते हैं, वर्तमान को खो डालते हैं। हम लोगों को वर्तमान नहीं खोना चाहिए, अब समझ रहे हो ना, हमें वर्तमान मत खो, वर्तमान का सदुपयोग करो भगवान का भक्ति कर करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जैसे पांच माला से कोई नीचे गिर गया है, सांस चल रहा है और दो आदमी आप पहुंच जाए, मतलब कैसे गिर गया ऊपर से भाई, कोई धकेल तो नहीं दिया, अपने से गिर गया, आत्महत्या करने, अरे वो बात बाद में करना, पहले इसको हॉस्पिटल ले चलो, ये तो मर जाएगा। ठीक है, नहीं पहले सुकृति जरूर होगी, तब साधुओं का संगति हुआ और साधु के संगति से नहीं नहीं आपके ही प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। तो इधर देखो, उधर कहां देख रहे हो, पास्ट को मत देखो, वर्तमान में रहो। पहले सुकृति उसकी होगी, सुकृति जरूर होगा कि जल्द साधु संगति हुई, और भक्ति होती है साधु संगति से।
महात्म के श्लोक में जैसे लिखा है कि भाग्योदय न बहुजन म समर्जिते न, सत्संगमम च लभते पुरुषम यदा वै, अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकारम नाशम विदेहि तदो दयते विवेक। तो बहुत जन्मों का जब पूर्ण
सुकृति होगा तो साधुओं का संगति होगा
जी,
जब साधुओं का संगति तो भक्ति होगा,
ऐसा कहा गया है। लेकिन फिर भी किसी किसी को देखा जाता है कि ऐसा होने के बावजूद भी भक्ति नहीं कर पाता है,
अब उसका दुर्भाग्य है, क्या करेंगे। और कुछ ऐसे भी होते हैं, देखो किसी को डॉक्टरेट का उपाधि मिल जाता है बिना पढ़े लिखे भी, कुछ अच्छा काम कर दिया तो, और कुछ लोग पढ़ते हैं तब डॉक्टर का उपाधि मिलता है। तो हम लोगों को उसका वेटिंग नहीं करना चाहिएगा, भगवान कृपा जरूर होती है, जो कृपा शुद्ध होते हैं कृपा होती है भगवान की, लेकिन प्रायः देखा जाता है कि उनका पूर्व जन्म का बहु जन्म नहीं कैसे है बहुनाम जन्म नाम उन्ती ज्ञानवान नाम, बहुत बहु जन्मों के बाद उसके बाद अन्यत्र है
ब्रह्मांड भ्रमते कौन, भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्त रहे, भाग्यवान जीव, वो भाग्यवान जीव है। तो पहले सुकृत जोड़ किया था। ओके, इनका प्रश्न थोड़ा टेढ़ा होता है लेकिन अच्छा होता है।
धन्यवाद प्रभु जी। आपने हमेशा की तरह आज भी भागवतम के गूढ़ बातों को बड़ी सरलता से प्रस्तुत किया है, और बीच में आपने एक जगह बताया भगवान के दर्शन की विधि, शास्त्र के हिसाब से आपने बताया कि चरणों से प्रारंभ करके हमें उनके मुखमंडल तक जाना चाहिए, फिर वहां पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दर्शन की दो स्थिति हो सकती है, एक तो आपने जो बताया वो, इसमें थोड़ा सा दृश्यता दिखती है क्योंकि जब हम चरण कमलों से स्टार्ट करते हैं फिर मुखमंडल तक जाएंगे फिर वहां पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो थोड़ी सी दृश्यता नजर आती है। मुझे, मेरा अपना विचार है, अगर हम उसको रिवर्स करें, हम मुखमंडल का दर्शन करते ही हम धीरे धीरे नजरें झुकाते हुए उनके चरण कमलों पर जाके स्थिर हो जाएं तो इससे हमारा दासता दासत्व भावना और समर्पण भावना झलकता है और मजबूत होता है। आपकी टिप्पणी।
जो भी सज्जन व्यक्ति होता है वो आंख से आंख नहीं लड़ाता है। कोई लड़की हो या कोई स्त्री हो और आप आंख 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 लड़ाओगे, कोई बड़ा व्यक्ति हो आंख आंख लड़ाओगे, कहेगा कोई कल्चर नहीं था आदमी को। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो संस्कारी होते हैं, वो चरण का ही दर्शन करते हैं, चरण में ही अपने को। जैसे लक्ष्मण जी, जब भगवान राम ने चूड़ामणि दिखाया सीता जी का, तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं तो कभी देखा ही नहीं ऊपर, मैं तो माता के केवल चरणों को ही देखा। यह है सज्जनता का परिभाषा। और वैसे भी यदि एक अबायक आप मुंह को देखोगे ना तो ब्रह्म ज्योति जो निकलती है ना चकाचौंध हो जाएगा। यदि एक्सपीरियंस करना है तो गर्मी के दिन में यहां पर करीब मई जून में आप 1-2 बजे 2:30 बजे मंदिर के बाहर फर्श के ऊपर थोड़ा आना, ऊपर से कभी अंधेरा से आना, आपका आंख नहीं रह सकता है, आंख बंद करना पड़ेगा, इतना लाइट आता है ना उस फ्लोर से, इतना लाइट आता है कि आंख बंद हो जाता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, हम देखेंगे एक बार। तो हम अंधकार में हैं और अंधकार से एक बाइक प्रकाश में जाओगे तो आंख बंद हो जाएगा, तो इसीलिए चाहिए चरणों से। इस संबंध में एक छोटा कहानी कह देता हूं, तब तो 9:30 बज जाएगा, ठीक है ना। एक बार ऐसे ही कथा हो रही थी, बहुत लोग कथा में बैठे हुए थे, एक चोर आ गया, पूरा कंबल उड़ा था, कथा उथा सुन लिया। वो महात्मा जी भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे थे कि कैसे भगवान सोने का नूपुर पहने हैं, करधनी पहने हैं, बाहुबंज है, गले में हार है, मुकुट है, वो सब काउंटिंग कर रहा था। कहा बाप रे बाप, इस आदमी को यदि मैं लूट लेता हूं सबसे धनी हो जाऊंगा, और अभी ये गाय चराने जाता है तब तो जरूर इसको लूटना चाहिए। कथा समाप्त हो गई, सब लोग चले गए, और वो आया साधु जी के पास, महात्मा जी के पास, और कहा कि महात्मा मैं थोड़ा देर से कथा में आया, वो जिस आदमी का भ्रमण कर रहा था उसका एड्रेस हमको दे दीजिए। तो इन्होंने सोचा कि भाई अच्छा भगत आदमी है तो एड्रेस पूरा मिल गया। तब तो कम्बल उठाया और कहा कि देखिए मेरा नाम सच्चे सच्चे दाऊद इब्राहिम है, मेरा नाम जो भी, अब मैं जा रहा हूं उसको लूटना चाहता हूं, यदि वो मिल गया तब तो आपका खैरियत है, यदि नहीं मिला तो आकर के मैं आपको बताऊंगा कि आप सबको गुमराह कर रहे हो। कहा जरूर जाओ, जरूर जाओ, जाओ जाओ। वो गया एकनिष्ठ भाव से लूटने के लिए, मथुरा पहुंचा, जाकर के एड्रेस पूछ रहा था तो कोई मथुरा के चतुर्वेदी जी थे, पूछा कि भाई ये एड्रेस कहां है, किस रास्ते से कृष्ण गाय चराने आते हैं। तो उसने कहा तो मूर्ख है क्या, ये द्वापर युग का बात था, आजकल युग में नहीं है, जाओ जाओ जाने। कहा नहीं आप नहीं जानते हो, हमारे गुरु जी ने एड्रेस दिया है, जरूर कृष्ण जाते हैं, मैं जरूर जाऊंगा। आगे बढ़े, 2-3 आदमी से पूछे, सबने कहा कि अभी का बात नहीं है। तो एक आदमी मिल गया, वो और कोई नहीं था, नारद जी थे।
नारद जी ने कहा हां बिल्कुल एड्रेस सही है, तुम जाओ इस रास्ते से भगवान जाते हैं, इस वो लड़का इस रास्ते गाय चराने जाता है, इसी रास्ते से आता है। और पट्टा गया, उस रास्ते पर कुआं था, कुआं पर बैठा और एक डंडा लिया, कहा कि बस बस। सुबह से बैठा बिना खाए पिए शाम तक, उधर देख रहा था कि अब आएगा, पहला दिन नहीं आया, दूसरा दिन नहीं आया, उसका गुस्सा का पारा ऊपर चढ़ रहा था, साथ ही साथ उसकी इंटेंसिटी उस लड़के का दर्शन करने का भी ऊपर चढ़ रहा था। तीसरे दिन गायों का आवाज सुनाई पड़ा, तब एकाग्र भाव से देखने लगा, फिर उसके बाद कुछ ढोल उड़ रहा था, फिर गाय आना शुरू की, बांसुरी का आवाज सुना, और देखते गया देखते गया, एकाग्र भाव सब कुछ भूल गया था, अनन्य भाव से केवल उसी में लग गया था, और वही उसी का ध्यान कर रहा था, जैसे अजामिल ध्यान किया था, जैसे ध्रुव महाराज ध्यान किए थे, जो गुरु जी ने बताया था कि चरणों में यह है यह है, सब तीन दिन तक ध्यान किया, एकाग्र भाव से ध्यान किया, और जब भगवान आए तो उनके चरणों से दर्शन करना शुरू किया, नुपुर पहला दिखना शुरू किया। वो तो देख रहा था क्या क्या समान है, लेकिन चरणों से दर्शन करते 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 जब चेहरा पर गया तो भगवान मुस्कुरा दिए और कुछ नहीं किए। कृष्ण का एक नाम है चित चोर, जब मुस्कुरा दिए तो उसका कल्याण हो गया। हरे कृष्ण। तो बाद में उसने कहा अरे मैं तो आपको चुराने आया था लेकिन आप हमको चुरा लिए। तो भगवान का दर्शन उनके चरणों से करना चाहिए। धन्यवाद। ओके विल स्टॉप हियर। हरे कृष्ण। ग्रंथाश्रम भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय।